ओम शांति। तो आज भट्टी का तीसरा दिन है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। मंगलवार को शुरू हुई तो तीन दिन में, ढाई दिन में या सवा दो दिन में बहुत परिवर्तन आया। हमारे जीवन का लक्ष्य ही है स्वयं को परिवर्तन करना। जो स्वयं के संस्कार हैं, ओरिजिनल संस्कार, उनका अनुभव करना, ईश्वरीय संस्कार, दैवी संस्कार। मुख्य रूप से हमारा जो आमना सामना होता है वो स्वयं के संस्कारों से ही होता है। कई प्रकार की जीवन में परिस्थितियां आती हैं, उनसे तो हम किसी ना किसी तरीके से निपट लेते हैं, लेकिन जब स्वयं के संस्कारों की बात आती है उसके लिए मेहनत है, उसके लिए युद्ध करना पड़ता है। और अगर संस्कारों में ही हमारा समय उस युद्ध में चला जाए तो हम उतना फिर शक्तिशाली स्वयं को महसूस नहीं करते हैं। जो आत्मा में सामर्थ्य, जो बल भरना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि सबसे नजदीक हमारे साथ कौन रहता है? कौन रहता है? हम स्वयं ही हैं। लेकिन हम स्वयं को ना देखते हुए, स्वयं के अस्तित्व को महसूस ना करते हुए दूसरे के संस्कारों का चिंतन करते रहते हैं। वो आदत पड़ जाती है, दूसरा क्या कर रहा है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इसी पशुपेश में, इसी उलझन में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और बाबा कहते हैं टाइम बहुत कीमती है, ये जो समय रूपी खजाना है, केवल ये संगम का समय, इसी का ही महत्व है। बाकी सारे कल्प के समय का इतना महत्व नहीं है, केवल ये छोटा सा टाइम है संगम युग। जितना हम पूरी समर्पणता के साथ, पूरी लगन के साथ उसका महत्व समझते हुए उसको हम सफल करने की अगर आदत बना लेते हैं तो फिर साधना का परम सुख अनुभव होगा। और साधना, हमारा जीवन ही साधना है, हमारी जीवन शैली ही साधनामय हो जाए, निरंतर साधना चलती रहे, चाहे वो ज्ञान की साधना है, चाहे वो याद की साधना है, चाहे वो सेवा की साधना है, संबंध संपर्क में आते हुए मीठा बोलने की साधना है, चाहे वो हमारी दृष्टि की साधना है, हमारी व्यवहारिकता की साधना है। जीवन में साधना प्रैक्टिकल झलकती रहे। जो भी साधक लोग होते हैं उनको देखने से पता चलता है कि ये साधक हैं, उनकी जीवन शैली ही, उनकी व्यवहारिकता ही बताती है। तो बाबा कहते हैं संसार में तुम सच्चे साधक हो, सच्ची साधना करने वाले हो। हर चीज की साधना बाबा ने हम सबको सिखाई है। तो साधना हमारी निरंतर अखंड साधना चलती रहे, अखंडानंद वरदान था ना चार पांच दिन पहले, अखंड आनंद हो, साधना खंडित ना होने पाए। और ऐसा नहीं है कि खंडित होने का कोई चांस नहीं मिलेगा, बहुत प्रकार की बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, समस्या आएंगी, विघ्न आएंगे, लेकिन हम उनको पकड़ के ना बैठ जाएं। चुनौतियां आएंगी कई तरह की, कई तरह की ऐसी बातें आएंगी जो ना चाहते हुए मुलझ जाएंगे उसमें, लेकिन उन सबसे हम न्यारे और प्यारे रहें, जितना न्यारे उतना प्यारे, क्योंकि बाबा ने हम सबको हर चीज की समझ दी है, नॉलेज दी है, अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए बाबा भी कहते हैं याद कैसे करना है, तीन बातें बताई आज, कैसे याद करना है, बहुत धैर्यता से, बहुत गंभीरता से और समझ के साथ है। ये कोई भाग दौड़ वाली साधना नहीं है कि केवल हम कमरे से निकल के बाबा के कमरे में बैठे तो ही हमारा योग का टाइम है, या केवल भट्ठी में आए हैं तभी हमारी साधना है। बड़ी धैर्यता चाहिए इसके लिए, निरंतर साधना है। हमारा सोना भी साधना ही है, सवेरे आंख खुलने से लेकर रात्रि तक, सोने तक नहीं बल्कि सोते समय भी साधना है, और उसका आधार है संकल्प शक्ति। साधना का आधार हमारी संकल्प शक्ति है, जो सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति। संकल्पों की साधना चाहिए, जितना स्वयं में हमने शुद्ध संकल्पों का खजाना, वो भंडार एकत्रित किया है, साधना अपने आप वैसी चलती रहेगी। वैसे भी जो हमने अपने मन में भर के रखा हुआ है, योग में वही दृश्य घूमते रहते हैं, भले हम सोमान ले लेंगे, कोई भी सोमान ले लेंगे, लेकिन दृश्य तो वही घूमेंगे जो हमने संकल्प पहले से मन में जमा करके रखे हुए हैं। अगर हमने संकल्प ले लिया, सोमान ले लिया, मैं बैगन बना सकूं, वो उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने विघ्न विनाशक बनने से पहले ही सारे दिन में विघ्नों वाले संकल्प अंदर में इकट्ठे करके रखे हैं, तो विघ्न विनाशक का संकल्प कैसे, सोमान कैसे काम करेगा। तो संकल्पों पर अटेंशन देने की आवश्यकता है। दिन प्रतिदिन हमारी साधना सूक्ष्म होती जानी चाहिए, श्वासोश्वास निरंतर, अखंड, अटूट, अटल, अचल, अडोल साधना, और ऐसा नहीं कभी टूटेगी नहीं, अगर थोड़ा टूटती भी है तो निरंतर फिर से सेकंड में निकल जाएंगे उससे बाहर, उसमें हम दिल शिकस्त नहीं होंगे, डिसाल्टेड नहीं होंगे। तो अपने संकल्पों को शुद्ध करना है, और संकल्पों को शुद्ध करने का माध्यम क्या है, ज्ञान का चिंतन, एक एक ज्ञान का बिंदु उसको गहराई से चिंतन करना है, और चिंतन करने से ही हमारी सोई हुई शक्तियां जागती हैं। जब तक हम अपने मन को काम नहीं देते हैं तब तक हम ढीले डाले रहते हैं, जैसे लक्ष्य मिल जाता है तो मन उसी अनुरूप काम करने लगता है। तो मन को शुद्ध संकल्पों से परिपूर्ण करना है और नए संकल्पों को जन्म देना है, नए संकल्पों को उनके साथ खेलना है, नए संकल्पों की उत्पत्ति करनी है। और नए संकल्प कहां से आएंगे, मुरलियों में तो है ही है, लेकिन उन संकल्पों को भी नया रूप देना है, क्योंकि हम मुरलियां सुनते हैं, रोज सुनते हैं, वही 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 लगती है, नवीनता की अनुभूति होनी चाहिए, अनुभूतियों के रंग हमारे जीवन में दिखाई देने चाहिए, ज्ञान के रंग, योग के रंग, गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, वो निरंतर रंग बरसते रहने चाहिए। और संकल्पों को नवीन करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, स्वयं के साथ बात करनी पड़ती है, ये जो भी क्लास सुनते हैं उसको पूरी एकाग्रता से सुनना पड़ता है, केवल खाना पूर्ति नहीं, किसी भी की हम क्लास सुने उसमें से कुछ तो हमारे हाथ में होना चाहिए। जैसे उस दिन डॉक्टर साहब ने क्लास कराई तो क्या बताया था, पहले पहले एसएस वाली बातें बताई थी, कौन कौन सी, बताई थी कि नहीं बताई थी, तो चलो ठीक है, याद भी नहीं रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आदमी, उसका भी टेंशन नहीं लेना है, कितनी खुशी होगी। और कर क्या सकते हैं, टेंशन ले लेंगे उसमें फायदा है, लेकिन उससे सीखना अपने को ऐसे 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 कौन सी बातें हो सकती हैं। जैसे आप कहां से आए भी, नासिक से है ना, तो नासिक अर्थात जो सदा निराकारी स्थिति में रहने वाले हैं, हाँ नासिक, कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, सिक माना बीमार है ना, और नासिक अर्थात सदा आत्मवानी, ये नेक्स्ट है ना, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, साक्षी दृष्टा, कर्मेंद्रिय जीत, तो ये चिंतन करने की विधि है। अपना हम नाम ले लें, सभी का अपना अपना नाम लिखो, उसका चिंतन करो, उसके जो स्पेलिंग है उन सब जो स्पेलिंग है उनके आगे परमात्मा महावाक्य जोड़ दो, क्योंकि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की जब तक हमने आदत नहीं डाली तो जिंदगी में युद्ध चलते रहेंगे, फिर हमारा दृष्टिकोण चेंज नहीं होगा, हमारी वृत्ति चेंज नहीं होगी, हमारी सोच चेंज नहीं होगी, जो नवीनता आनी चाहिए वो नहीं होगी। इसलिए हर चीज में नवीनता ढूंढनी है, और जहां नवीनता है वहां कभी भी बोरियत नहीं आती है, जहां नवीनता वहां जीवन जीने का मजा आता है, जहां नवीनता वहां ऊर्जा होती है, वहां खुशियां पैदा होती हैं, उस दिल उस चीज में रुचि बैठ जाती है, आकर्षण होता है चीज में, नई चीज में। बाजार में नई चीज खरीदते हैं तो कैसे हमारा मन चला जाता है, और वही पुरानी चीज बार बार खरीदने जाए तो मन मानेगा नहीं, नई चीज ढूंढते हैं। तो ऐसे ज्ञान में भी नवीनता चाहिए, नए संकल्पों की रचना करनी है। सोमान है तो उस सोमान में नवीनता जोड़नी है, जैसे मैं शुद्ध संकल्पों का सागर हूं, मैं महान संकल्पों का सागर हूं, मैं पवित्र संकल्पों का सागर हूं, अब उसमें उतर जाओ सागर के अंदर, और प्योरिटी से संबंधित कौन कौन से सोमान है, मैं पवित्रता का मुख्य स्रोत हूं, संसार की सारे संसार को पवित्रता देने की, पवित्रता की ऊर्जा देने का मैं मुख्य स्रोत हूं। नए नए संकल्प क्रिएट करने हैं, और इसमें धैर्यता चाहिए, जो बाबा ने तीन बातें बताई, धैर्यता, गंभीरता और समझ। तो बड़े प्यार से बाबा क्या करना, भागदौड़ वाली जिंदगी नहीं है, फटाफट जा रहे हैं, योग करना योग करना योग करना, योग तो लगा ही हुआ है हमारा, केवल दिशा चेंज करनी है, चाहे हम कर्म क्षेत्र पर हैं, चाहे हम मधुबन में हैं, चाहे हम सोए हुए हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, मन के संकल्पों की दिशा को चेंज करने की आदत सीखनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम केवल ये 2-2.5 घंटा साधना करके हमारा जीवन बदल जाएगा, नहीं, ये तो केवल हमको एक मार्गदर्शन मिल रहा है, एक रास्ता तैयार किया जा रहा है, जिस रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है, उसके लिए भट्टी का आयोजन होता है, और भट्टी अर्थात परिवर्तन, नित्य नया परिवर्तन, जो हम कल थे आज वो नहीं है, उससे थोड़ा सा तो फर्क पड़ा आगे बढ़ने का, जो सवेरे थे अभी वो नहीं है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए हैं, 1 सेकंड पहले थे वो भी नहीं है, तो फुल स्टॉप लगेगा, बीती को बीती लगाने की ताकत आएगी, नहीं तो पुरानी बातों को पकड़ के हम उसका ही मंथन करते रहेंगे, गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ेंगे तो क्या होगा, बदबू आएगी ना। तो पुरानी बातों का चिंतन करने के बजाय हम ज्ञान का चिंतन करें नए नए तरीके से, कोई भी क्लास को, क्यों कोई भी कराता है, हर एक ही क्लास में कुछ ना कुछ तो नवीनता होती है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण कैसा है, उनके प्रति एटीट्यूड कैसा है, क्या हमारी सीखने की परिपाटी है, या हम केवल बस गिने चुने के लोगों को क्लास को महत्व देते हैं तो भी हमारा कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो जाती है। भगवान का हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है, चाहे वो क्लास करवा नहीं रहा, क्लास कराना बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत कॉमन बात है, अपने जीवन को बदलना, अपने संस्कारों को बदलना, अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखना, हर परिस्थिति में अचल अडोल रहना, यही सच्ची साधना है। ऐसा नहीं है जो स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं वो आगे हैं, नहीं, जो घर में रह रहे हैं, जिनको कोई जानता नहीं है, बाबा की नजरों में वो ही आ गए हैं, है ना। आज हम एक माता जी थे, बोले मैं मोबाइल लाई नहीं हुई, इधर मट्टी में लाई नहीं मोबाइल। कितनी अच्छी बात है, सीखने वाली बात है, कितनी बड़ी साधना है। मोबाइल का त्याग करके दिखाओ चार दिन, और माता जी इधर ही बैठे हुए हैं। एक प्रमिला माता कहाँ से आए हैं माता जी? इधर नहीं आए। हाँ, ये बैठे आगे देखो। तो सीखने वाली बात मिली है। अब इतना बड़ा पाठ पढ़ा दिया हमने, भी पढ़ लिया वो। और कोई है जो मोबाइल नहीं लेके आए घर से? दो तीन चार पांच, कितना दिल पर पत्थर रख के आए हैं। घर वालों ने बोला भी कि भाई बात नहीं होगी तो कैसे बनेगा। अरे भाई, जब मोबाइल नहीं थे तब भी तो चलता ही था ना। तो हम कितना इनके ऊपर आधारित हो गए हैं। हाँ, जरूरी काम होता हो तो ठीक है, लेकिन असली साधना के लिए त्याग तो बाबा, तो बाबा की नजर तो सबसे पहले उन पर पड़ेगी ना, है ना। तो ये हर एक से कुछ ना कुछ बातें सीखने की हमको आदत सीखनी है, क्योंकि हर आत्मा के अंदर विशेषताएं भरी हुई हैं, अथाह विशेषताएं हैं, लेकिन हमारी दृष्टि वैसी होनी चाहिए, है ना। काल का था ना, काल या परसों का वरदान था, विशेषताओं की संजीवनी बूटी, कितनी अच्छी बात है। उसे क्या करना है, क्या करना है, उसे मूर्छित को सुरजित करना है। तो कितनी सारी विशेषताएं हैं, वो संजीवनी बूटी हमारे अंदर ही है, हम स्वयं ही संजीवनी बूटी हैं। वो आत्मा के अंदर सारी दवाइयां भरी हुई हैं, लेकिन समय पर हम उनको ले लें। दवाइयां तो लेके रख दी हैं, लेकिन रखी कहां है इसका पता नहीं है। बाबा सवेरे सवेरे मेडिकल स्टोर खोल देता है, हर बीमारी को दूर करने की दवा दे देता है, चाहे वो दृष्टि की साधना है, मन को साधने की साधना है, बोल को साधने की साधना है, जो बाबा कहते मीठे बोल बोलो, हर चीज की दवाई दे दी, लेकिन हमने समय पर उसको लिया नहीं। किसी के संबंध संपर्क में आए तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें बहुत मीठा बोलना है, लेकिन सवेरे उसको उन्होंने रिमाइंड ही नहीं किया तो कड़वा बोल रहे हैं, दवाई काम से कहां से करेगी। फिर दूसरे दिन फिर सुनेंगे मीठे मीठा बोलना है, क्योंकि आदत नहीं पड़ी, फिर कड़वा बोलेंगे। तो फिर सूक्ष्म परतें हमारे जो ओरिजिनल संस्कारों को ढकती जाती हैं, छोटे छोटे दर्द, छोटे छोटे दर्द अर्थात जो बाबा हमको श्रीमत देते हैं उस पर हम थोड़ा भी नहीं चलते हैं, इग्नोर कर दिया तो थोड़ी तो मन में टीस पैदा हो जाती है कि मैंने आज इस बात का, इस बात को अमल में नहीं लाया है, इस बात का अनुभव नहीं किया है। तो वो एक छोटे से दर्द का पर्दा आगे पड़ जाता है, अगले दिन फिर दूसरा तीसरा, ऐसे करते करते सारे दिन में अनेक प्रकार की दीवारें पर्दे खड़े हो जाते हैं और हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, जो हमको वास्तव में करना चाहिए। तो संकल्प शक्ति को शक्तिशाली बनाना है, संकल्प शक्ति में नवीन ऊर्जा भरनी है, संकल्प शक्ति को में उसमें उड़ान भरनी है, संकल्पों में प्राण भरने हैं, ऊर्जा भरनी है। तो अभी बीच बीच में थोड़ा खेल भी करेंगे। तो आज की मुरली के अनुसार याद रखने का सहज तरीका भी है, कुछ 5-10 शब्द ले लेने जिसको हम प्रैक्टिकल में एक्सरसाइज के रूप में तब्दील करेंगे, है ना। जैसे आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर तुम क्या करना है, बाबा को गुड मॉर्निंग, तो सब करो गुड मॉर्निंग। और एक होता खाली गुड मॉर्निंग करते हैं मुंह से, उससे मजा नहीं आता इतना, थोड़ा हाथ से करेंगे तो इसमें कितनी निर्माणता आती है, इसमें याद भी रहता है, बाबा की दृष्टि पड़ेगी। नहीं तो गुड मॉर्निंग इतने बच्चे कर रहे हैं, बाबा से पता नहीं कौन सा बच्चा करके चला गया, तो कम से कम हाथ जोड़ के बाबा गुड मॉर्निंग। तो अभी इसको याद रखना, ये एक नंबर हो गया, क्या है गुड मॉर्निंग। जब हम फिर एक नंबर बोलेंगे तो आपको फिर ऐसे करना है, ठीक है। तो एक नंबर में गुड मॉर्निंग, फिर प्रश्नोत्तर में था मीठे बच्चे तुम्हें धैर्यवत गंभीरता और समझ के साथ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो दूसरा है आत्मा, तो जब आत्मा दो नंबर में बोलेंगे तो सबको हाथियां लगाना है, लगाओ सभी हाथ, सबके हाथ चल रहे हैं ना, आत्मा है अंदर शरीर में, चल रहे हैं, तो ठीक है। तो मैं आत्मा हूं, दो नंबर आत्मा हूं, तीन नंबर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। तो तीन नंबर बोलेंगे तो सबको ऐसे करना है, माना ये याद की एक पोज है, ये बाप को बड़े प्यार से याद करना है। और चार नंबर है दिल से याद करना है, दिल ठहर जानी चाहिए तो दिल से याद करना है, चार नंबर आ गया। पांच नंबर है तुम्हें सर्च लाइट देनी है, यहां से ऐसे करना, फिर सर्च लाइट देनी है। कितने हो गए? पांच। जो बच्चे सर्विस करते रहते हैं बाप को उनकी डैश मिलती है, क्या करंट मिलती है? वो तो याद में था, ये सर्विस वाली बात है, आशीर्वाद मिलती है। तो छह नंबर क्या हो गया? आशीर्वाद, माना हम सारे संसार को वरदान दे रहे हैं जैसे। अच्छा ये बताओ दो नंबर क्या था? हाँ थोड़ा पक्का करना पड़ेगा ना। एक नंबर क्या था? गुड मॉर्निंग बाबा। दो नंबर आत्मा। तीन नंबर याद। चार नंबर दिल ठहर जाना चाहिए। पांच नंबर सर्च लाइट। छह नंबर आशीर्वाद। अच्छा सात नंबर, तुम बच्चों को याद के साथ साथ चक्कर भी फिराते रहना है। तो ये चक्कर इधर फिराना है, स्वदर्शन चक्कर अलग है, ये चक्कर फिराते रहना बुद्धि में, अर्थात ज्ञान टपते रहना चाहिए। कितना नंबर हो गया? सात। आठ नंबर, ड्रामा में, ड्रामा के दस पॉइंट थे, उसमें से दो देवियों का नाम लिया बाबा ने, कौन सा? काली और दुर्गा। तो सात नंबर क्या था? चक्कर फिराना। तो आठ नंबर है मैं दुर्गा हूं, और नौ नंबर तो काली कैसे करेंगे? ऐसे मैं काली हूं, सब जीव निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा क्या ये शरीर भी, इसको भी साधना है हमारा, योग रमणीक होना चाहिए, तन और मन दोनों की साधना होनी चाहिए। तो नौ नंबर क्या है? जीव, जीव या काली, ठीक है। अच्छा फिर दस नंबर, मुरली में और बहुत सारे शब्द आते हैं वैसे, फिर भी हम चार पांच और पांच छह और ले लेते हैं। तुम्हें कहां याद करना है? परम धाम। तो दस नंबर परम धाम, और ग्यारह नंबर सूक्ष्म वतन फरिश्ता, और बारह नंबर स्थूल वतन, उसमें ताली बजाने की, ठीक है। और तेरह नंबर बुरा ना बोलो, चौदह नंबर बुरा ना देखो, और पंद्रह नंबर बुरा ना सुनो। तो ये पंद्रह बातें करेंगे तो सोलह काल संपन्न अपने आप ही हो जाएंगे, ठीक है। अभी फिर से हम एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। एक नंबर था बाबा गुड मॉर्निंग, दो नंबर मैं आत्मा हूं, तीन नंबर याद की यात्रा, चार नंबर दिल से याद करना है, पांच नंबर सर्च लाइट देनी है, छह नंबर आशीर्वाद, सात नंबर चक्कर को फिराती रहना है, आठ नंबर दुर्गा, नौ नंबर काली। कौन कौन काली इसमें? दस नंबर परमधाम, ग्यारह नंबर फरिश्ता, बारह नंबर स्थूल वतन, तेरह तेरह नंबर बुरा ना बोलो, चौदह नंबर बुरा ना देखो, पंद्रह नंबर सोलह नंबर निपटा, ठीक है। तो रेडी स्टडी गो। तो नंबर तीन क्या है? तो करना, बोलना नहीं, अभी करके दिखाना आपको, बोलना बिल्कुल भी नहीं। तीन नंबर क्या है? फिर बोले आप, कंट्रोल की पावर काम नहीं कर रही है। दो नंबर फिर बोले, देखो बोलना बिल्कुल नहीं है। यह भी तो साधना है, बिल्कुल नहीं बोलने का भी। पांच नंबर बोलना नहीं, ये है। सात नंबर, नौ नंबर, बोलना नहीं, जीव निकालने के बाद। आठ नंबर, सोलह नंबर, पंद्रह, सबके पोज अलग अलग हो गए। पंद्रह नंबर क्या था? हाँ, बुरा ना समझ। दो नंबर, चलो पहले कंटिन्यूस कर लेते हैं। एक, बोलना नहीं, आप कर करके सीधा। एक नंबर, दो नंबर, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, ठीक है ठीक है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। जो नहीं करे वो बहुत ही अच्छा है, वो तो टेंशन फ्री है। दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, कितना अच्छा हो गया। अब देखो साइलेंस में रहे कितनी पावरफुल एनर्जी इकट्ठी होगी, क्योंकि बोलने से हमारी एनर्जी बहुत जाती है। एक बोलने से, दूसरा देखने से। अगर हम दूसरे की विशेषताओं को देखते हैं तो जैसे हम एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं, और एनर्जी इकट्ठे कर रहे अर्थात हम वातावरण को शक्तिशाली बना रहे हैं, हम भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं, उसकी आशीर्वाद मिल रही है, एटमॉस्फेयर पावरफुल बन रहा है, वो पावरफुल एटमॉस्फेयर से दूसरों को भी शक्तिशाली अनुभूति होगी, उसकी भी दुआएं हमको मिलेंगी, क्योंकि बड़ी सूक्ष्म फिलॉसफी है। तो जो भी हम देख भी रहे हैं वो भी हमारी एनर्जी आंखों से ले भी रहे हैं, आंखों से एनर्जी दे भी रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अगर किसी को आत्मा देखते हो जैसे तुम उसको करंट देते हो, जैसे उसको तुम शक्ति भरते हो, तो खाली एक एक को नहीं, बस आंखें बंद करके ये सोचो कि मैं सारे संसार की आत्माओं को देख रहा हूं। अब जिसको हमने नहीं देखा उसको भी तो आत्मा ही देखना, क्योंकि एक हमारी आंतरिक वृत्ति की बात है ये सारी। वैसे थोड़ी दिखाई दे रही है आत्मा, चेहरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मन की हमारी आंतरिक वृत्ति अगर वो परमानेंट हमारी एकदम पक्की हो जाती है कि सभी आत्माएं हैं, तो हम फिर संसार के जो हद की बातें आती हैं, हद के संस्कार रहते हैं, उन सबसे ऊपर उठ जाएंगे। नहीं तो सबके संस्कार हमारे पर अटैक करते रहेंगे, चाहे वो भाषा के, जाति के, धर्म के, कितनी सारी बातें आती हैं। और संसार में तो आज कल हर चीज अपने चरम सीमा पर चल रही है। राजनीति देख लो, धर्म सत्ता देख लो, प्रकृति सत्ता देख लो, सब सत्ताएं अपने अंतिम चरण में हैं, और हम सबको इन सबसे ऊपर जाना है। अवस्था हमारी तभी अच्छी बनेगी जब हम बेहद में रहेंगे। अगर हम व्यवस्था को देखेंगे तो अवस्था नहीं बनेगी, अव्यवस्था में ही हमारी अवस्था परिपक्व होती है। साधनों के अभाव में ही साधना प्रचंड होती है, साधनों के अभाव में ही साधना अग्नि रूप में लेती है, लगन की अग्नि तड़प बढ़ती है। घर में ज्ञान हमको पूरा निश्चय समझो, और कोई हमको रोके तो रुकेंगे हम? कितनी लगन होती है, कितनी तड़प होती है। और थोड़ा सा अगर संशय भी है, संशय बाबा के ऊपर नहीं है, अपने ऊपर ही संशय है, तो भी हमारी लगन की अग्नि नहीं होती। इसलिए पहले तो स्वयं के ऊपर निश्चय चाहिए कि बाबा जो हमको कह रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है, कि तुम एक कल्प कल्प के विजयी आत्मा हो, उसको घोटना नहीं है, महसूस करना, उसको रियलाइज करना है। वो मैं वो हूं, 100% हूं, क्योंकि कहने वाला कौन है? वो सत्यम शिवम सुंदरम है। वो झूठ थोड़ा बोलेगा, वो गपशप थोड़ा मार रहा है, वो हमको ऐसे थोड़ा चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है, प्रैक्टिकल में है वो। लेकिन कहीं ना कहीं उस विश्वास में दूरी बनी रहती है। सबसे पहले तो बाबा के निश्चय से पहले स्वयं के ऊपर निश्चय से सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, तो आत्म जागरण हुआ। बताया तुम आत्मा हो, तो आत्मा हो तो हो ही हो, वैसे तो वैसे है ही आत्मा। वो तो हम संसार में अज्ञान काल में भी सब जानते हैं कि शरीर तो विनाशी है, आत्मा विनाशी है, लेकिन यहां रियलाइजेशन है, महसूसता यहां प्रैक्टिकल में, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। उथला उथला ज्ञान केवल थ्योरेटिकल हो जाता है, थ्योरी है हमारे पास, प्रैक्टिकल में उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो हमारे अंदर में समाता नहीं है ज्ञान वो। इसलिए बाबा कहते समझ के साथ, धैर्यता के साथ, बड़े प्यार से, गंभीरता से, जल्दी जल्दी योग नहीं करने का, टाइम पास नहीं करने का, जितना समय बैठे हैं उसको पूरा हमारा सफल होना चाहिए। सवेरे एक घंटा भी होकर तो पूरा पावर आनी चाहिए, वो प्रभात की साधना का फल हमको दिखाई देना चाहिए, अर्थात ताकत महसूस होनी चाहिए, बोलने को मन ही नहीं करेगा। वो परमधाम ऊपर नहीं, यही जहां हम बैठे वही परमधाम बन जाएगा, जहां हमारी दृष्टि पड़ी वही परमधाम है। तो धीरे धीरे अपने संस्कारों को समझना है, जल्दबाजी नहीं करने की, नहीं तो हमको जल्दबाजी क्या होती है, हम ये करेंगे तुरंत परिणाम मिलना चाहिए। अब तीन दिन की बैठी ना एकदम कुछ तो लाल लाल दिखना चाहिए, कुछ तो ऊपर से बाबा की ज्योति बिंदु साक्षात्कार होना चाहिए, इन सबसे ऊपर जाना है। ज्ञान है, ज्ञान माना समझ, साक्षात्कार तो हमको हो ही रहा है प्रैक्टिकल में। लक्ष्मीनारायण बाबा कहते तुम्हारे सामने, वो तो प्रैक्टिकल में साक्षात्कार तो है ही है ओरिजिनल स्वरूप, और वो लक्ष्मीनारायण इसी बॉडी में अनुभव करना है और बताने का नहीं किसी को, लेकिन नहीं तो फिर लोग मजाक उड़ाएंगे। अब बताओ पांच नंबर क्या था? इधर वाले नहीं बोल रहे, पांच नंबर से परे चले इधर वाले, सर्च लाइट। हाँ चलो बोल के सुना सकते हैं। सात नंबर क्या था? चक्कर, चक्कर तो नहीं आ रहे कहीं। अच्छा बाबा ने मुरली में तीन टाइटल भी दिए थे और ड्रामा के अंदर, तुम सुदर्शन चक्करधारी हो, तुम लाइट हाउस माइट हाउस हो, और एक और बोला था, सर्च लाइट तो आई है। अब बताओ दो नंबर क्या था? ये आत्मा ऐसे होता है, ये सेकंड का खेल। दो नंबर आत्मा। आठ नंबर क्या था? दुर्गा जी बोल उठी है। इसका नाम शिवा नहीं है? नहीं, ये दूसरी है। अच्छा पांच नंबर क्या था? पंद्रह नंबर, आठ नंबर, नौ नंबर। जीव जीव दिखा रहे मुझे। हमने बोला था बोल के दिखाने का, अभी आदत आदत पड़ जाती ना, अब जीव निकालने की आदत पड़ गई। जब हमने बोला करके दिखाना तो बोल के दिखा रहे, और जो बोला कर बोल के दिखाना तो करके दिखा रहे। कितना उल्टा पुल्टा माइंड जो हमारा ना, बड़ा गड़बड़ कर देता है, हमारे हाथ में नहीं है ये। ग्यारह नंबर क्या था? फरिश्ता। तेरह नंबर, बुरा ना बोलो, चलो ठीक है सब पास हो गए। चार नंबर, हाँ बड़े दिल से, या कैसे याद करनी, जैसे दिल क्या हो जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, अर्थात ठंडा हो जाना चाहिए, दिल ठंडा हो गया तो ओम शांति हो जाएगा। अर्थात दिल ठहर जाना चाहिए, अर्थात क्या, एकदम बाबा दिल में बस जाना चाहिए, दिल की धड़कन स्टेबल हो जानी चाहिए। चलो लगातार एक नंबर से करते हैं, ठीक है? एक नंबर गुड मॉर्निंग बाबा, दो नंबर मैं शुद्ध आत्मा हूं, साथ में जोड़ देना, ये अपने अपना जोड़ सकते हैं, तीन नंबर याद की यात्रा, चार नंबर दिल से बाबा को याद करो, पांच नंबर सर्च लाइट, छह नंबर आशीर्वाद। अच्छा आशीर्वाद कब मिलेगा, उसके लिए बाबा ने क्या कहा था, जब तुम दिल से सर्विस करोगे तो मैं बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। जो बच्चे बहुतों की सर्विस करते हैं उतने उन्हें बहुत आशीर्वाद मिलती है। तो सर्विस केवल मुख से नहीं है, मन से भी है। एक भी आत्मा के प्रति हमारी नेगेटिव भावना ना हो, घृणा नफरत ईर्ष्या, ये बड़ी सूक्ष्म कमजोरियां हैं, सूक्ष्म विकार हैं, जो सहज निकलते नहीं है उनको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे तो माया भी अपना सूक्ष्म रूप से हमारे पर हमला करने की योजना तैयार करेगी और वो अपना बदला लेगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले उससे दोस्ती कर रखी थी, अब उसको हम छोड़ रहे हैं, कैसे छोड़ेगी वो? तो उसको भी युक्ति से छोड़ना, अभी उसको भी दुख नहीं लेना छोड़ने के लिए, क्योंकि लंबे समय से दोस्ती की रखी है और द्वापर से फिर से दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर उससे दोस्ती नहीं की तो फिर भी भगवान मिलेगा ही नहीं। भगवान तो मिला उसी के कारण हमको, अगर उसने हमको तंग नहीं किया होता है तो फिर बाबा को हम क्यों याद करते। हाँ, एक चीज और थी, तुम्हें बाप की याद डैश चाहिए, सतानी चाहिए, सतानी चाहिए एकदम। अच्छा, कहाँ? चार नंबर पर पहुंचे थे ना, पांच पर। पांच नंबर क्या था? सर्च लाइट। छह नंबर आशीर्वाद पर पहुंचे थे। सात नंबर चक्कर। आठ नंबर दुर्गा। नौ नंबर काली। अब जीव निकाल रहे कोई। दस नंबर परमधाम। तो सारी एनर्जी जैसे खींच ली और मैं ही परमधाम हूं। वो संसार में तो वैसे कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, है ना, जैसे बाबा तो कहते हैं, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे भगवान कहाँ है तो क्या बताओ? मेरे दिल में है। तो सर्वव्यापी बाबा ने तो खुद ही कह दिया अपने आप ही। तो मैं परमधाम हूं, सारी एनर्जी सारी आत्माएं मेरे इर्द गिर्द घूम रही हैं, मैं मुख्य स्रोत हूं, सारे संसार को पवित्रता की एनर्जी देने का मुख्य स्रोत हूं, स्वयं वो पवित्रता का सागर मेरे साथ कंबाइन है। ये कितना नंबर था? दस। ग्यारह नंबर फरिश्ता। बारह नंबर वो चुप ही हो गए सारे। बारह नंबर तो ये है। ग्यारह नंबर, तेरह नंबर, चौदह, पंद्रह, सोलह, तीन, ठीक है, सब पक्के हो गए। तो हमें संकल्प शक्ति में नवीनता भरनी है। दूसरी बात है, ये जो हमको हेल्थ मिली है, स्वास्थ्य मिला है, ये तंदुरुस्त होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा हेल्थ ठीक ही नहीं है ना, तो जितना मर्जी प्रयास कर लो, योग उतना पावरफुल होता नहीं है। या तो लंबे इसमें की साधना हो तो फिर तो कंट्रोल कुछ तो रह सकता है, लेकिन जब हेल्थ हमारा साथ नहीं देता तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। बुखार थोड़ा सा हो जाए तो जीभ का स्वाद ही बिगड़ जाता है, सब फीका फीका लगता है। अगर कोई ज्ञान भी सुनाएगा तो भी ऊपर ऊपर से चला जाता है। तो ये बड़ी अमूल्य संपत्ति है, इसलिए हेल्थ को ठीक रखने के लिए जो हमको चीज सही खानी चाहिए वो हमको खुद ही देखना है ना, क्योंकि संसार में भी हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक है सभी, क्योंकि हमारा एक तो बुद्धि ये है, दूसरी बुद्धि कहाँ है? ये पेट बीमारी बुद्धि है ये। अगर इसमें हमने शुद्ध संकल्प डाल दिए और इसमें हमने खराब खाना डाल दिया तो दोनों का युद्ध होगा फिर, और ये पेट ही जीतेगा फिर वो, क्योंकि आदत पड़ी है, पुराने संस्कार हावी हो जाएंगे। हम खुद अनुभव कई बार कर चुके, अगर थोड़ा भी ऐसा वैसा खा लिया और पेट भारी हो गया तो सारा योग जो ना पेट के तरफ ही लगा रहता है। इसलिए हर चीज को अंडरस्टैंडिंग समझ के साथ, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और जो भी सुनाते हैं क्लास के लिए ये नई चीज खानी चाहिए, वो करके देखो, जबरदस्ती नहीं, प्यार से समझ के साथ, और उसका फिर जिक्र नहीं करना है। नहीं तो हम करते थोड़ा है, एक दिन परहेज कर लिया और दस लोगों को बता देंगे हम। हवा नहीं लगनी चाहिए, क्लास में सुना करना चालू कर दो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। ये सोचो मैं ठीक हो गया तो दस को और बताऊं, नहीं जरूरत बताने की, अपने आप को ठीक रखो केवल। हम करते कम है और बताते थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि हेल्थ जब तक, ये हेल्थ बड़ी अमूल्य संपत्ति है, ये ठीक नहीं है तो साधना हमारी ठीक नहीं होगी। शरीर को साधने की भी साधना है, क्योंकि भगवान की दी हुई अमानत है शरीर, और इसके साथ हमने खिलवाड़ कर दिया तो भगवान की संपत्ति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको हम धोखा दे रहे हैं। बाबा भक्ति में भी कहते ना, तो प्रैक्टिकल में तन मन धन सब तेरा, पहले भी समझ थी, लेकिन अभी उसमें परमात्मा समझ समा गई है। भक्ति मार्ग में या वैसे भी संसार में देखो, हेल्थ के प्रति कितना जागरूक रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, समय पर खाना, समय पर उठना, समय पर सब चीज, है ना। हमारे डॉक्टर साहब तो कितने फिट हैं, जब से हम देखो क्लास कराने की बजाय वैसे उनका चलता फिरता जीवन ही क्लास है एकदम। माता जी देखो ये सब एक एक देखने की बात है, सबको ना अपनी एक एक विशेषताओं की लिस्ट तैयार करनी है ना। अभी आप इनकी 5 विशेषताएं बताओ हाथों हाथ, एकदम पढ़ लेना किसी के चेहरे को, फटाफट उसकी विशेषताएं दिखाई देनी चाहिए। हाँ जी, हाथों हाथ बाबा जो आते हैं ऊपर से तो स्टार्टिंग में कैसे विशेषताएं बता देते हैं हमको, बाबा सोचते हैं इसमें कौन सी होगी इसमें कौन सी होगी, आते धड़ाधड़ विशेषताओं से कितने ऊंचे ऊंचे सोमान। तो हम भी तो उसी बाप के बच्चे हैं, हमारे भी तो वही संस्कार, हमारे भी तो वही संकल्प, हमारे तो वही वाइब्रेशन, हमारी भी तो वैसी वृत्ति, हमारी तो वैसी दृष्टि होनी चाहिए। तो हर एक की विशेषताओं को देखना है और वो तभी आएगा जब हर आत्मा को महत्व देंगे। किसी भी आत्मा को महत्वहीन नहीं समझना है। एक भी आत्मा को अगर हमने उसका महत्व कम किया अर्थात हमने भगवान का महत्व कम किया। हाँ, कोई अपने संस्कारों से है बेचारा, लेकिन हमारे दृष्टिकोण में वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम संसार की नैया को पार लगाने की जिम्मेवारी भगवान ने सौंपी हुई है। अगर हम खुद ही लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, तो संसार का बेड़ा पैसे पार कैसे करेंगे। भले जितना मर्जी सोमान हम रिवाइज करते रहे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, स्वयं का कल्याण हमने किया नहीं तो विश्व का कैसे होगा। तो हर आत्मा के प्रति, और वो तब होगा जब स्वयं के प्रति रहम दिल होंगे, स्वयं को संपन्न बनाने की चिंता लगी होगी, स्वयं को संपन्न बनाने के लिए हम चिंतन करते रहेंगे, स्वयं को हम टाइम देंगे, स्वयं की विशेषताओं पर चिंतन करेंगे। हाँ, कमियों पर भी चिंतन करना है, जो कमियां हैं उनको भी देखना है, अगर कोई कमी नहीं निकल रही है तो उसके ऊपर भी चिंतन करना है कि कौन सी ऐसी बात है, कहां मैं ऐसे संग में चला जाता हूं जिससे वो कमी हमारी जा नहीं रही है, या कौन से संघ से मैंने दूरी बना रखी है जिस संघ में जाने से मेरी कमी दूर भी हो सकती है। तो स्वयं के साथ हमको स्वयं के ऊपर हैंडल बनना है। 6 नंबर क्या था? आशीर्वाद। देखो आज सबका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। 7 नंबर चक्कर पक्का हो गया सबको, हमको भूल जाएगा आपको पक्का हो जाएगा। 2 नंबर हाँ, तो बात चल रही थी स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के साथ भी हमको बाबा कहते ये क्या है, हुसैन का बाबा ब्रह्मा को कहते, लेकिन ये शरीर भी तो ऐसे ही है ना, बाबा कहते इसको चाबुक नहीं लगाना है, इसके बारे में नेगेटिव ठीक है बीमारी है लेकिन उसका चिंतन नहीं करना, मैं बीमार हूं है, दवाई लो, इलाज कराओ, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि बाबा ने हमको संपत्ति, ज्ञान की संपत्ति दी है, हर चीज की अंडरस्टैंडिंग दी है, जितना हम उसको अपने जीवन में लाएंगे समझेंगे तो शरीर भी साथ देगा, शरीर साथ दे रहा है तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते साधना निरंतर होती रहेगी। अगर ये घोड़ा ही ठीक नहीं रखा तो जितने मर्जी बैठने वाला सवारी का वो घोड़ा चलेगा नहीं ठीक से, सवारी वाला मजा अनुभव कैसे करेगा, वो सेल्फ जो जागृति होनी चाहिए कैसे होगी, अवेयरनेस कैसे होगी, फिर घोड़ा ही ठीक नहीं है तो और बैठने वाली सवारी भी क्या होगी, वैसे होगी ढीली ढाकी। तो हर चीज की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो संकल्प शक्ति, संकल्प में बहुत बड़ी ऊर्जा है, हमारे संकल्प ऐसे वैसे नहीं होने चाहिए, हमारे संकल्प कल्याणकारी होने चाहिए, स्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, सेवाओं की नई नई योजना, जरूरी नहीं भाग दौड़ वाली योजना नहीं है, कुछ मनसा संकल्पों की सेवना है। और मनसा सेवा कैसे होती है, मनसा सेवा वास्तव में निरंतर हो ही रही है, जो भी हमने संकल्प अंदर में एनर्जी इकट्ठी करके रखी है वो एनर्जी का औरा तो अपने आप क्रिएट हो रहा है और वो अपने आप ही जा रहा है, केवल जब हम सोमान में स्थित हो जाते हैं वो सोमान के वाइब्रेशन उसकी किरणें वो अपने आप ही काम करने लगती हैं। नहीं तो अगर सारा दिन हम हमारी दिनचर्या ऊपर नीचे रही और शाम को बैठ के योग में थोड़ी सी किरणें निकलेंगी आगे फिर बादल आ जाएंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे धड़ाम से फिर नीचे आ जाएंगे अर्थात चिंतन नहीं आगे चलेगा, ऐसा थोड़ा नहीं आत्मा सीधा ऊपर ही पहुंच जाएगी, नहीं, जहां हम बैठे हैं हमारी वृत्ति ऐसी हो जाएगी जो बाबा के महावाक्य हमारी शत्र छाया बनकर वो गूंजते रहेंगे और उनके वाइब्रेशन संसार को अपने आप ही जाते रहेंगे। बाबा कहते छोटी सी आत्मा कितना वंडरफुल पार्ट है इसके अंदर, कितने जन्म इसने प्ले कर दिए, क्या क्या इसके अंदर भरा पड़ा है, इतना ही सोच लो, सबसे बड़ा वंडर है ये छोटी सी आत्मा, कितनी छोटी सी है, कितनी छोटी सी है, एनर्जी है वो तो एक, ये बिंदी भी बड़ी बहुत बड़ी हो जाती है, कितना वंडरफुल है, इतने बड़े शरीर को लेकर चल रही है और उसके अंदर कितने संस्कार बड़े बड़े हैं। एक ही चीज को लेकर बैठ जाओ, मैं आत्मा इस संसार में आई किस लिए हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे भगवान ने आखिर पकड़ा क्यों, क्यों नहीं उसने मुझे संसार में जाने दिया, क्यों उसने मुझे संसार में जाने से रोका, उसने तो कुछ हमारे में देखा ही है ना, कुछ तो हमारे में विशेषताएं कुछ प्रतिभाएं देखी है ना, कि इसी आत्मा के संकल्पों को संसार को नई दिशा मिलेगी, संसार सुखमय बन जाएगा। किसी भी एक आत्मा का संकल्प ही संसार को परिवर्तन करने की ताकत रख सकता है। इसलिए सारे दिन की दिनचर्या और विशेषकर अमृत वेले, क्योंकि सारे दिन में हमारी तो भागदौड़ रहती है, लेकिन हमने सवेरे सवेरे अगर थोड़ा सा भी अपने आप को चार्ज कर लिया, एक घंटा भी शक्तिशाली पावरफुल, टाइम पास वाले नहीं करने का, हाँ लंबे समय अगर 3-4 घंटे बैठने तो उसके लिए ज्ञान बहुत चाहिए, इतना था ज्ञान चाहिए, और उसके लिए बहुत गहरा चिंतन चाहिए, बहुत सारी चीज में थोड़ा किनारा करना पड़ता है, तो ज्ञान के संस्कार धीरे धीरे अपने आप में उपड़ते जाते हैं, वो ज्ञान हमारी फिर कर्मेंद्रियों में समाता जाएगा, हमारी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में, व्यवहारिकता में, वो ज्ञान अपने आप ही काम करना शुरू कर देगा, उसके लिए हमको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब ये देखना है, अब ये सोचना है, अब ये करना है, नहीं, अपने आप ही वो फार्मूला कौन सा कर्तव्य को लगाना, अपने आप ही वो स्मृति में आएगा, किसी को प्रश्न उत्तर पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं तो ये पूछें वो पूछें। अब बाबा ने कोई भी ऐसा क्वेश्चन का आंसर नहीं छोड़ा जो नहीं बताया हो, हर क्वेश्चन का आंसर बताया, किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम प्रश्न किसी से पूछ रहे हैं, अर्थात हमने कहीं ना कहीं ज्ञान से दूरी बना के रखी है, मूल्यों को हमने अपने अंदर आत्मसात नहीं किया, स्वयं को मूल्यों के अंदर डुबोया नहीं है, वो ज्ञान का सागर उसने तो सारा हमको ज्ञान दे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्ञान से हमारी प्रीत कम है, ज्ञान के चिंतन से प्रीत कम है। 6 नंबर क्या था, देखो एकदम फटाफट याद आ गया, देखो हमको, हम तो फिर भी सोच रहे थे क्या होगा, 10 नंबर फ्रॉम धाम, 15, 2, 7 काली, 9 नंबर, हाँ तो आप उल्टा बोलना, जब हम बोले तो आप नंबर बोलने का है ना, आत्मा, सर्च लाइट, आशीर्वाद, 7 नंबर क्या था, चक्कर, चलो सब पास हो गए। तो संकल्प शक्ति में धार लगानी है, नहीं तो अंदर की सोई हुई शक्तियां जागृत नहीं होगी, और कितनी शक्तियां हैं वो हमको लिस्ट तैयार करनी है, बाबा ने जो हमको शक्तियां दी हुई है, कौन कौन सी शक्ति दी हुई है, कितनी शक्तियां दी हैं, बस उससे बड़ी नहीं आगे कोई भी, वो तो कितने सालों से दी हुई है, उसका तो अभी ब्याज भी बड़ा होगा, कुछ ना कुछ डबल होगी होगी, एफडी कराई होगी कुछ उसके। सर्व शक्तियां कौन कौन सी, लेकिन तो 50 शक्तियां लेनी कम से कम, और वो हैं सबके अंदर, ज्ञान सारा अंदर ही भरा पड़ा है, बाहर जाने की जरूरत नहीं, अंदर में बैठ जाओ, थोड़ा चिंतन करो, पवित्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति, निर्भयता की शक्ति, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति, कितनी सारी शक्तियां हैं, हाँ जी, महसूसता की, रियलाइजेशन पावर, सुनने की शक्ति, सुनाने की शक्ति, बोलने की शक्ति, बैठने की भी शक्ति है, शक्ति है तभी तो बैठ पा रहे हैं, नहीं तो उठ के चले जाते, परिवर्तन शक्ति है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, समय की शक्ति है, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति का चित्र कौन सा है बताओ, डेड बॉडी, और सहन करने की शक्ति का चित्र, पेड़ पर फल, और समाने की शक्ति का चित्र कौन सा है, नदी सागर में, अच्छा अहंकार का चित्र कौन सा है, अहंकार, अहंकार पहाड़, जो लास्ट वाला प्रदर्शनी के लास्ट किताब में चित्र है, लास्ट वाला अहंकार, अग्नि का गोला और ऊपर से गिर रहा है वो अहंकार वाला है, तो ये सारे चित्र भी याद होने चाहिए, और अपने चित्र भी क्रिएट करने हैं, तो कुछ क्रिएटिव माइंड बनना है, अपने जो हमारे अंदर भगवान ने शक्तियां भरी हैं जो उसने हमको दिया हुआ है, खजाने दिए हुए हैं। आज भी मुरली में था ना, तुम बच्चों को अविनाशी खजाने मिले हुए हैं, खुश नसीब हो तुम बच्चे, सारे संसार में को खुशी का भंडार देने वाले हो। तो सारा वो चिंतन करना है। तो शे कितनी बातें सुनी, 15 बातें तो वो होगी, आज 16 होगी, देखो ये आज 16। और दूसरा संकल्प शक्ति, मेन मुख्यतः संकल्प शक्ति की साधना, तो साधना का परम सुख अनुभव कर सकेंगे और जीवन ही हमारा साधना बन जाए। सोचना ना पड़े हमको योग लगाना है। योग अगर थोड़ा कच्चा हो रहा है उसको शक्तिशाली बनाने के लिए मुरली पढ़ो, चिंतन करो, थोड़ा क्लास सुनो किसी के, अच्छा उससे भी बोरियत हो जाते गीत सुनो, खुश रहना, खुशी नहीं छोड़नी है, भगवान के बच्चे और खुशी गायब, इम्पॉसिबल। बाबा को कैसा लगता होगा मेरे बच्चे उदास हो सकते हैं, माँ बाप को कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं जो सदा खुश रहने वाले, तो भगवान के बच्चे और उदास हो सकते हैं नहीं, तो सदा खुश रहने का है। अच्छा, ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।